हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है यहाँ इस्कॉन के श्री जगन्नाथ मंदिर में। पिछले हफ्ते रविवार के कार्यक्रम में भागवतम के प्रसंगों पर चर्चा प्रारंभ की थी। इससे पहले कि हम आगे कुछ कहें, रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों को कोई संभाले। बाहर उस तरफ बच्चों का कार्यक्रम है, तो मैं भी उपेंद्र प्रभु जितने भी बच्चे हैं उनको कृपया वहां ले जाइए ताकि सब लोग ध्यान से भागवत सुन सके। वैसे अच्छा नहीं लगता ऐसे बच्चों को बाहर भेजना क्योंकि बच्चों को भी अधिकार है भागवत सुनने का। ऐसा नहीं है कि उन्हें अधिकार नहीं है, लेकिन उनके लिए दूसरी तरह की भागवत करी हुई है वहां पर। आप बैठ जाओ, आप बैठ सकते शांत। क्योंकि उनको कुछ वीडियो वगैरह से अच्छा लगता है भागवतम, उनको वीडियो ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए उनके लिए व्यवस्था की है। सो कृपया आप सब उसको पालन कीजिए। तो भागवत पर चर्चा प्रारंभ की थी कि किस तरह से कुछ प्रसंगों को हम लोग लेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और पिछली बार प्रारंभ किया था दक्ष प्रजापति का प्रसंग। आपको स्मरण होगा कि हम लोगों ने चर्चा की कि कैसे विदुर जी ने मैत्रेय से प्रश्न किए, मैत्रेय मुनि से। तो हम लोगों ने चर्चा की कि कैसे विदुर जी वहां तक पहुंचे, जीवन भर अपना सारा जीवन हस्तिनापुर को देने के बाद उनको क्या मिला। उनको लोगों ने कहा कि चोर है, दुर्योधन ने कहा ये जासूस है, शत्रु पक्ष से मिला हुआ है, इसको धक्का देकर बाहर निकाल दो। तो विदुर जैसे महान व्यक्ति के लिए ऐसी अवस्था में आना जहां उन्होंने अपना जीवन किसी स्थान के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, धृतराष्ट्र से बहुत प्रेम करते थे, तो ऐसे उनको सुनना पड़ा। और फिर उन्होंने अपना धनुष बाण रख दिया। पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वे चले गए तीर्थ यात्रा पर और अलग अलग स्थानों में बहुत समय तक घूमते हुए फिर उद्धव से मिले और उसके बाद मैत्रेय मुनि के पास गए। उद्धव जी ने उनको कहा, उद्धव ने बहुत सुंदर संदेश दिया कि श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर जाते समय आपका स्मरण कर रहे थे, आपके लिए एक संदेश है, आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए। तो फिर मैत्रेय मुनि के पास गए और फिर अलग अलग प्रश्न विदुर ने किए। क्रीडां विधत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदे मनो न कृत्यतिशृंगताम नाम सुश्लोक मौलेश्वरितामृतानि। अलग अलग अवतारों का वर्णन कीजिए, इस ब्रह्मांड की रचना का वर्णन कीजिए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न किए। और फिर मैत्रेय मुनि कथा सुनाने लगे। सुनाते सुनाते उन्होंने दक्ष की कथा, दक्ष का वर्णन किया कि वो प्रजापति हैं, उनकी पुत्रियों का वर्णन किया, अलग अलग पुत्री का वर्णन किया, किसका विवाह किससे हुआ। फिर सोलहवीं पुत्री का वर्णन करते हुए कहा कि उनका विवाह शिवजी से हुआ लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई, और इसका कारण ये था कि बहुत छोटी उम्र में दक्ष की सोलहवीं पुत्री सती देवी, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये सुनकर विदुर को बड़ा आश्चर्य हुआ। विदुर ने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये कथा प्रारंभ हुई। पिछली बार हम लोग सुन चुके हैं कि दक्ष आए सभा में, शिवजी उठकर खड़े नहीं हुए और जिसके कारण दक्ष ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा और इतना ही नहीं उन्हें श्राप भी दे डाला। तो आज आगे इसके आगे ये हम कथा कहेंगे। तो पिछली बार हमने सुना कि दक्ष आए और दक्ष, क्योंकि उन्हें मान सम्मान नहीं मिला, शिवजी ने, बाकी सबने मान सम्मान दिया लेकिन शिवजी ने नहीं दिया, केवल इसीलिए क्रोधित होकर उन्होंने बहुत बुरा भला कहा कि ये शिव ये राख लगाकर घूमने वाला, शमशान में रहने वाला, मैं तो अपनी पुत्री का विवाह ही नहीं करना चाहता था, ब्रह्मा जी के कहने पर कर दिया। और इसीलिए उन्होंने हाथ में जल लिया। जब किसी को श्राप देना होता है या दान देना होता है तो हाथ में जल लेकर छोड़ा जाता है। दक्ष ने हाथ में जल लिया और शिव जी को श्राप दे दिया। उसने कहा कि सारे देवताओं को यज्ञ में आहुति का हिस्सा मिलना अनिवार्य है, सारे देवताओं के लिए हिस्सा होता है, लेकिन मैं श्राप देता हूं कि आज से शिव जी का कोई हिस्सा नहीं होगा देवताओं के साथ यज्ञ में, किसी भी यज्ञ में शिव जी का कोई हिस्सा नहीं होगा। अर्थात सारे देवताओं को अपना अपना हिस्सा मिलेगा यज्ञ में, लेकिन शिव जी को नहीं मिलेगा। एक बहुत महान आचार्य है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो इस प्रसंग को बहुत अच्छी तरह लेते हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा कि ये जब शिव जी को श्राप दिया दक्ष ने, तो दरअसल ये श्राप नहीं, वरदान था। तो क्यों वरदान था? अरे उन्होंने तो कह दिया कि कुछ नहीं मिलेगा इन्हें, किसी यज्ञ में नहीं मिलेगा, सारे देवताओं को मिलेगा इन्हें नहीं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो इसलिए वरदान हुआ कि अब शिव जी जो देवताओं में सबसे महान है, वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ है, उनको इन लोगों के साथ बैठना नहीं पड़ेगा अपना हिस्सा लेने के लिए, जो भौतिकवादी हैं, जिनके हृदय में अभी भी भौतिक कामनाएं हैं, अर्थात अन्य देवता। तो उनका कहना था कि दक्ष ने ये श्राप देकर शिव जी का स्थान और ऊंचा कर दिया, कि शिव जी कोई साधारण देवता नहीं है जो इनके साथ लाइन में बैठकर खाएंगे, इसीलिए उनका हिस्सा इनके साथ नहीं होगा। तब से नियम है कि देवताओं के साथ शिव जी का हिस्सा नहीं किया जाता, देवताओं से श्रेष्ठ है वो, महादेव है, देवों में देव महादेव। तो इसीलिए वो कहने लगे कि बहुत अच्छा हुआ। तो खैर जब ये दे दिया और वो चले गए श्राप देकर, देखिए क्रोध के कारण दक्ष ने क्यों किया, क्रोध में आकर। शिवजी ने कोई अपराध नहीं किया था दक्ष के प्रति, शिवजी के लिए उचित था खड़े नहीं होना, क्योंकि शिवजी भले ही दक्ष की पुत्री के पति हैं, लेकिन फिर भी स्तर में दक्ष से बहुत ऊंचे हैं। दक्ष एक साधारण जीव है जिन्हें ब्रह्मा जी ने कोई पद दे दिया, कोई शक्ति प्रदान कर दी, लेकिन शिवजी ऐसे नहीं है, इसलिए शिवजी को खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी क्रोध के कारण उन्होंने श्राप दे दिया। तो इसीलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतम त्रयम् त्यजेत। भगवान कहते हैं कि तीन द्वार हैं नरक जाने के लिए। देखिए हम लोग में से कोई ऐसे हैं जो दरवाजा ढूंढेंगे नरक जाने के लिए, कौन से दरवाजे से नरक जा सकते हैं। भगवद गीता में तीन दरवाजे बताए हैं। भगवद गीता कहती है त्रिविधम नरकस्येदम, तीन तरह से नरक में जाया जा सकता है, तीन द्वार है। द्वारम नाशनम आत्मनः, ऐसे द्वार हैं जो आत्मनः यानी अपना ही नाश करने वाले हैं। द्वारम नाशनम आत्मनः, अगर उस द्वार में आप प्रवेश करेंगे तो आपका नाश ही होगा। तो कौन कौन से ऐसे द्वार हैं? काम क्रोधस तथा लोभस। भगवान कहते हैं तीन द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। और वो कहते तस्मादेतम त्रयम त्यजेत, इन तीनों को त्यागना चाहिए, त्यजेत यानी छोड़ देना चाहिए। अगर नहीं छोड़ेंगे तो नरक का द्वार खुला, बहुत कष्ट हमारे लिए। तो दक्ष ने क्रोध किया और क्रोध के कारण स्वाभाविकता उसने अपनी गति अधोगति कर ली, अर्थात नीचे की ओर। देखिए हमारे कार्य से हमारे आचरण से हम अपनी गति निश्चित करते हैं। हम जिस तरह का कार्य करते हैं वैसी हमारी गति होती है। मान लीजिए अगर कोई बहुत बुरे कार्य करता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि इस जगत में एक व्यक्ति है जो पाप करता है, धोखा देता है लोगों को, धोखे से धन कमाता है, सारे गलत कार्य करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, लोगों को धोखा देता है, पैसे लूटता है, लेकिन फिर भी बहुत आनंद में है। उसके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, और दूसरी ओर हम बड़े ईमानदारी से अपने कार्य करते हैं, ड्यूटी करते हैं, कोई किसी को धोखा नहीं देते, लेकिन हम हमेशा कष्ट में हैं। तो प्रश्न ये आता है कि अगर कर्म के आधार पर, कार्य करने के आधार पर इस व्यक्ति को अगर दंड नहीं मिल रहा, क्योंकि वो तो इतने गलत काम कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं उसे दंड मिल रहा, क्यों उसके पास सब कुछ है? और इसी कारण से लोगों को प्रेरणा हो जाती है गलत काम करने की, अज्ञान से। हम देखते हैं वो व्यक्ति गलत काम कर रहा है, पैसा कमा लिया, आनंद ले रहा है, हम भी गलत काम करेंगे, क्योंकि उसका कुछ नहीं हो रहा, उसको कोई दुख नहीं है, उसको कोई कष्ट नहीं है। फिर शास्त्रों में लिखा है कि गलत काम करने से कष्ट होता है, पाप करने से, लेकिन देखो यहां कोई कष्ट नहीं है, इसीलिए व्यक्ति गलत काम में पड़ता है। तो हो सकता है कोई गलत काम करे, उसको हो भी सकता है कुछ अभी गलत ना हो, लेकिन निश्चित कर्म के अनुसार उसको दंड भुगतना पड़ेगा। एक कर्म का नियम बहुत जटिल है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो कर्म है, कर्मणों गति, कर्म की जो गति है वो बहुत गहन है। गहन मतलब बहुत जटिल है, गहना कर्मणों गति ही। इसीलिए व्यक्ति को जानना चाहिए कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। कर्मणो हि अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। तो ऐसा क्यों होता है कोई आदमी गलत काम कर रहा है लेकिन उसको कुछ नहीं हो रहा? उसको होगा, अभी समय है, क्योंकि उसने अपने पूर्व जन्म में जो पहले अच्छे काम किए हैं अभी उसका फल भुगत रहा है, वो अच्छे कर्मों का फल उसको मिल रहा है। लेकिन ये जो गलत काम यहां कर रहा है, वो शराब पीना, मांस खाना, धोखा देना, चोरी करना, इसका जब फल मिलेगा तब वो प्रश्न करेगा भगवान से, मैं ही क्यों, भगवान आपने मुझे ही क्यों चुना? और इसका प्रमाण देते हैं, कभी कभी कोई बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही, जन्म से ही उसको कोई ना कोई बीमारी होती है, कोई शारीरिक तकलीफ होती है, मानसिक तकलीफ होती है। अब प्रश्न ये आता है कि ये बच्चे ने तो कुछ नहीं किया, ना अच्छा किया ना बुरा किया, अभी तो जन्म लिया है, तो फिर इस बच्चे को ये कष्ट क्यों? क्योंकि इसके पूर्व जन्म के कर्म है। तो कर्म से सब कुछ बंधा हुआ है हमारा जीवन, हम क्या करेंगे जीवन में ये भी बंधा हुआ है। चाणक्य पंडित कहते हैं, आयुर्बलम च वित्तम च विद्यानिधनम एव च पंचतानि हि सृज्यन्ति। पांच चीजें जन्म ले लेती हैं बालक के जन्म लेने से पहले, और वो है कितना बल होगा, कितना धन होगा इत्यादि, और कब निधन होगा। तो अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चर्चा में, क्योंकि ये चर्चा आई है तो इसको ये प्रश्न लेते हैं। प्रश्न आता है कि सब कुछ तो फिक्स है, सब कुछ बंधा हुआ है हमारे जीवन में, हम कब पढ़ाई करेंगे, कितनी पढ़ाई करेंगे, विद्या, चाणक्य पंडित कहते हैं कितनी विद्या लोगे पहले से निश्चित है, तो कितनी पढ़ाई करेंगे और कितना धन कमाएंगे, धन वित्तम, और फिर हमारा कब मृत्यु होगा, सब निश्चित है। तो अगर सब कुछ निश्चित है तो हम मंदिर जाएंगे या नहीं ये भी निश्चित है, हम भक्ति करेंगे या नहीं ये भी निश्चित है, तो फिर अगर हमें भक्ति करनी होगी तो एक दिन चले जाएंगे मंदिर, नहीं करनी होगी तो जहां है वैसे ही रहेंगे। तो ये प्रवचन सुनने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि सब कुछ बंधा हुआ है। आपके जीवन में लिखा है इस दिन इस तारीख को ये व्यक्ति मंदिर जाएगा, ये व्यक्ति भक्ति करेगा, तो जिसके जीवन में लिखा है वही करेगा, बाकी तो नहीं करेंगे। तो क्या सब कुछ फिक्स है, सब कुछ बंधा हुआ है? और अगर ऐसा है तो हम लोग केवल रोबोट्स हैं। आप जानते हैं रोबोट जो हाथ, उसको प्रोग्राम कर दिया जाता है, वो हाथ ऊपर करता है, नीचे करता है, कुछ बोलता है, उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, वो किसी से प्रेम नहीं करता, वो तो केवल एक प्रोग्राम पर चलता है। तो क्या हम सब ऐसे रोबोट्स हैं? अगर हमारे जीवन में सब कुछ बंधा हुआ है, आप लोग क्या सोचते हैं? अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न है, आप सबको उत्तर देना है। हम जब भी प्रश्न पूछते हैं तो आधे लोग उत्तर देते हैं, आधे नहीं देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ना कहें तो अच्छा है, क्योंकि जो भी सही होगा फिर कहेंगे हम यही कहने वाले थे। तो इसलिए आप सब उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न, क्या हमारे जीवन में सब कुछ बंधा हुआ है? कर्म के अनुसार सब कुछ फिक्स है, कब क्या होगा ये पहले से है, जिसे हम भाग्य कहते हैं, डेस्टिनी कहते हैं, विधान कहते हैं, विधि का विधान। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं ये तो उसके जीवन में होना था, उसकी मृत्यु आ गई थी इसलिए ऐसा हुआ। देखते हैं ना, कभी कभी प्लेन में कोई जा रहा होता है, दरअसल जाने वाला नहीं होता, अंत में लास्ट में उसको टिकट लेता है और जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है, तो लोग कहते हैं अरे अरे जाने वाला नहीं था ये तो लोग कहते कोई बात नहीं उसका समय आ गया था। या फिर ऐसा होता है कि प्लेन में टिकट लिया होता है, आखिरी समय में वो कैंसिल कर देता है किसी कारण से, पहुंच नहीं पाता एयरपोर्ट और पता चलता है एयरप्लेन क्रैश हो गया, तो लोग कहते हैं अभी समय नहीं आया था इसका, इसीलिए बच गया। तो सब कुछ फिक्स है। तो आप में से कितने लोग कहते हैं कि जीवन में सब कुछ फिक्स है? हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग कहते हैं कि जीवन में सब कुछ फिक्स है? कोई नहीं, डर रहे हैं आप लोग। कोई चिंता मत कीजिए, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, प्रमोशन नहीं मिलेगी अगर गलत आंसर नहीं हो, कोई चिंता नहीं। तो बताइए कितने लोग कहते हैं कि सब कुछ जीवन में फिक्स है? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, माता जी लोग में कोई भी नहीं करते, सब कुछ फिक्स नहीं है, हम बनाते हैं अपना जीवन। अच्छा ठीक है, तो कितने लोग ये कहते हैं कि जीवन में सब कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है? हाथ ऊपर कीजिए। अगर हमने तीसरा प्रश्न तो कोई पूछना नहीं है, दो ही प्रश्न थे। तो अभी थोड़े लोगों ने कहा कि कुछ फिक्स है, थोड़े लोगों ने कहा कुछ नहीं। दरअसल कर्म के सिद्धांत के अनुसार हमारे जीवन में सब कुछ निश्चित नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में सब कुछ निश्चित है, ये गलत धारणा है, ये गलत समझ है कर्म के सिद्धांत की कि सब कुछ। इसीलिए लोग कहते हैं जब भगवान बुलाएंगे जाएंगे मंदिर, लोगों को आप आइए मंदिर, बोलो जब भगवान की इच्छा होगी। तो सब कुछ फिक्स नहीं है हमारे जीवन में, क्यों? क्योंकि हमें भगवान ने स्वतंत्रता दी है। अगर सब कुछ भगवान ने पहले से निश्चित कर दिया होता तो फिर स्वतंत्रता कहां रह जाती? तो भगवान चाहते हैं, हम लोग जीव हैं, हमारे अंदर प्राण हैं, और इसीलिए भगवान चाहते हैं कि हम लोग स्वतंत्र रहें। तो अगर सब कुछ निश्चित होता तो फिर हम कभी स्वतंत्र नहीं होते, हमारी स्वतंत्रता नहीं देते भगवान। लेकिन भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है और यही प्रमाण है कि हर चीज निश्चित नहीं है इस जगत में। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है भगवान की अनुमति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता? ऐसा कहते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वो सही है, वो भी सही है। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना, ये भी सही है वो भी सही है। अरे सही क्या है, एक तरफ बोल रहे हैं कि कुछ निश्चित नहीं है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। सब कुछ निश्चित कैसे नहीं है, इसका उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई आकर आपको थोड़ा धन देता, धन आना निश्चित था, लेकिन उस धन का आप क्या उपयोग करेंगे ये निश्चित नहीं, वो आपके ऊपर है, आपके संस्कारों के ऊपर है, आपके ज्ञान के ऊपर है। ये जानिए इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आध्यात्मिक पथ पर आना, भगवद गीता पढ़ना ये अनिवार्य है, नहीं तो भगवान भगवद गीता क्यों देते हैं? अगर सब कुछ निश्चित है तो भगवद गीता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी भगवान को। भगवद गीता भगवान ने दी ताकि इसे पढ़कर जो चीज आपके जीवन में निश्चित है उसे आप बदल सके, ये भगवद गीता है। तो जो आपके जीवन में निश्चित है उसे बदला जा सकता है, लेकिन साधारण कार्यों से नहीं। तो किस कार्य से? अब देखिए, जैसे हम उदाहरण दे रहे थे कि आपको धन मिलता है तो आप उस धन का क्या उपयोग करेंगे, किस पर आधारित है? सबसे पहला आपके पूर्व कर्मों पर, आपने जो पहले कर्म किए हैं उसके अनुसार आपकी एक बुद्धि बनी है, आपकी एक मानसिकता बनी है, आपकी कुछ इच्छाएं बनी हैं, और उन इच्छाओं के आधार पर आप उसे 1,00,000 रुपए का या जो भी मिले आपको, 10,00,000, 1,00,000, 50,00,000 उसका उपयोग करेंगे। दूसरा, आप उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं आपको जो संस्कार मिले हैं उसके आधार पर, और तीसरा आप उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं आपने जो ज्ञान अर्जित किया है भगवद गीता भागवत से, शास्त्रों से, ऋषि मुनियों से, उसके आधार पर। तो जब व्यक्ति पहले स्तर का कार्य करता अर्थात कर्मों के आधार पर करता है वो निश्चित है, अर्थात आपको जब धन मिला तो आपके पूर्व कर्मों के अनुसार निश्चित था कि आप जाकर इसका गलत उपयोग करेंगे, आप इसके शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे और जुए में सब हार जाएंगे, ये निश्चित है। लेकिन अगर आपने भगवद गीता पढ़ी, अगर आपको अच्छे संस्कार मिले, भगवद गीता का ज्ञान लिया, तो आप उस निश्चित चीज को बदल सकते हैं, तब आप उसका उपयोग किसी गरीब को मदद करने में कर सकते हैं, भगवान के मंदिर में दान देने के लिए कर सकते हैं, भगवान का मंदिर बनाने के लिए कर सकते हैं, या कोई भी और कार्य अच्छे कार्यों के लिए कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जान लीजिए, हमारे जीवन में सब कुछ निश्चित नहीं है, क्योंकि ये एक गलत धारणा लेकर लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवद गीता नहीं पढ़ते। वो कहते हैं कि अगर जीवन में होगा अपने आप पढ़ लेंगे, अपने आप आ जाएगी। नहीं, इसके लिए प्रयास करना है, अपने कर्मों को बदलने के लिए प्रयास करना है। और हमारे अंदर वो शक्ति भगवान ने दी है, वो सुविधा भगवान ने हमें दी है, वो क्षमता भगवान ने हमें दी है कि हम अपने कर्म बदल सकते हैं। इस बात को समझना चाहिए। तो इसलिए कैसे कर्म करने चाहिए, तीन प्रकार के कर्म होते हैं। अच्छे कर्म अर्थात किसी को भूखे को खाना खिलाना, हॉस्पिटल खोलवाना, दवाइयां बांटना, ये अच्छे कर्म है। दूसरा विकर्म, बुरे कर्म, शराब पीना, मांस खाना, हत्या करना, चोरी करना, डाका डालना, बहुत लंबी लिस्ट है। इन दोनों से हमारे कर्म नहीं बदलते हैं, ये दोनों केवल बंधन का कारण है, इससे हमारे कर्म नहीं बदलेंगे, इससे जो निश्चित है जीवन में वो नहीं बदलेगा। तो फिर किससे बदलेगा? अकर्म से। अकर्म अर्थात भगवान के लिए किया गया कर्म, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म, इससे हमारे जीवन में जो निश्चित है वो बदल सकते हैं। और इससे बहुत कुछ बदल सकते हैं, इससे आपके जीवन में आपकी मृत्यु किस समय होगी उसको बदला जा सकता है। इसीलिए भगवान के महान भक्त योगी अपने मृत्यु का समय खुद निश्चित करते हैं, निश्चित कर सकते हैं, तो हम वो बदल सकते हैं। हम गलत कार्य करने जा रहे हैं जिसके कारण और हमें कष्ट होगा, हम उसको बदल सकते हैं। ये एक चक्र है। हमने गलत कार्य पहले किए, बुरे कार्य किए, उसके आधार पर हमारी कोई इच्छाएं बनी और गलत कार्य करने के लिए, और फिर हमने गलत कार्य किया और फिर उस गलत कार्य से और इच्छा गलत कार्य की। तो देखिए कैसे चक्र में व्यक्ति फंसता जाता है, और इस चक्र से निकलने का मार्ग भगवान देते हैं। तो इस कारण से भगवान ने भगवत गीता दी कि चक्र से निकलो, और यही एक प्रमाण है। भगवान ने भगवत गीता दी, भागवत दिए, शास्त्र दिए, भक्त दिए, ऋषि मुनि दिए, आचार्य दिए, उपयोग कर अपनी बुद्धि का, अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करो, भगवान की भक्ति करो, ताकि जो लिखा हुआ, जिस बंधन में फंसते जा रहे हो, उससे बाहर निकल सको। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तीन द्वार हैं नरक के, काम, क्रोध और लोभ। देखिए तीनों चीजें हमें इस जगत में बांध कर रखती हैं, काम वासनाएं, क्रोध करना और लोभ, और पाने की इच्छा, जो मिलता है उसमें संतुष्ट नहीं है, हमें लगता है बस अब और थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, लेकिन वो थोड़ा सा कभी संतुष्ट नहीं करता। जिसके पास थोड़ा सा धन है, मान लीजिए जिसके पास एक साइकिल है, वो सोचता है टू व्हीलर से संतुष्ट हो जाऊंगा, जिसके पास टू व्हीलर है वो सोचता है फोर व्हीलर से संतुष्ट हो जाऊंगा, जिसके पास फोर व्हीलर है, मान लीजिए साइकिल वाले के पास टू व्हीलर आ जाता है, तब वो सोचता है फोर व्हीलर हो तो अच्छा, फोर व्हीलर आ जाता है और अच्छा वाला हो तो अच्छा, और फिर जब बहुत बढ़िया बड़ा महंगा वाला आ जाता है तो सोचता है प्लेन लेना चाहिए, अब ये फोर व्हीलर में काम नहीं चलेगा। हाँ, लोग खरीदते हैं, अब जानते बड़े बड़े लोगों के अपने प्राइवेट प्लेन्स हैं, तो वो संतुष्ट नहीं है गाड़ियों से, फिर उन्होंने प्लेन खरीद लिया। अब पता नहीं प्लेन में भी संतुष्ट नहीं हो तो उसके आगे क्या खरीदेंगे, हमें नहीं, रॉकेट लेंगे, क्या लेंगे पता नहीं, प्राइवेट रॉकेट्स रखेंगे या जो भी, संतुष्ट नहीं है, हमें और चाहिए, लोभ है। इंग्लिश में कहावत है कि व्यक्ति, एक व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं के लिए इस जगत में बहुत है, एक व्यक्ति नहीं, सारे व्यक्तियों की, जितने भी व्यक्ति हैं इस जगत में, उन सब की आवश्यकताओं के लिए इस जगत में बहुत है, लेकिन एक व्यक्ति के लोभ के लिए इस जगत में पूरी मात्रा में समान नहीं है। अर्थात लोभी व्यक्ति, देखिए सारे जगत का भी चीज मिल जाए तो भी सोचेगा शायद कोई और प्लेनेट पे कुछ और हो, वहां से भी कुछ मिल जाए, आदमी कभी संतुष्ट नहीं है। हम लोग देखते हैं ना, छोटे से गांव में रहता है और उसको लगता है कि मैं शहर जाकर बहुत अच्छी तरह से धन कमा लूंगा, सुखी हो जाऊंगा। शहर चला जाता है, छोटा शहर, सुखी नहीं होता। मान लीजिए कारोबार के आसपास कोई गांव में रहने वाला, वो कारोबार आता है शहर में, आ फिर थोड़ा समय बाद लगता नहीं छोटा है, चलो बंबई जाते हैं। वैसे बंबई जाने का शौक लोगों को बहुत है, वो पहले, अभी पता नहीं क्या है, लेकिन पहले कई साल पहले जब पिक्चरें बना करती थी तो उसमें एक ही चीज दिखाते थे, व्यक्ति बहुत गरीब है, गांव में रह रहा है, खाने को पैसा नहीं है और कर्जा है, कर्जदार घर पर आ रहे हैं, वो छुपा रहा है अपना मुंह पैसा नहीं देने के लिए, फिर एक दिन अचानक बंबई आ जाता है और फिर 3 घंटे की पिक्चर होती थी, अभी पता नहीं कितने की, तो वो 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर, वो तो कभी कभी 15 मिनट में दिखा देते पिक्चर, टक 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 टक, वो आदमी सूट बूट हो गया, कार हो गई उसके पास, बंबई में पैसा ही पैसा, घर पे जाता है लोगों को, और वो जो उसके मांगने वाले थे उनको बुला के, अरे इधर आओ, ये लो पैसा ही। तो ये देख देख कर गांव वाले सोचने लगे कि यही सही मार्ग है, तो सब बंबई भागने लगे। तो जो छोटे गांव में है वो शहर में आते, जो शहर में वो बंबई, बड़े शहर में जाते हैं, और जो बंबई में है वो अमेरिका जा रहे हैं, वो बंबई में संतुष्ट नहीं है, उनके लिए बंबई बड़ा छोटा है, सारे बंबई से अमेरिका भाग रहे हैं, और जो अमेरिका में है वो चांद पर जाना चाहते हैं, वो भी वहां संतुष्ट है, कोई कहीं संतुष्ट नहीं। क्यों? और चाहिए, और चाहिए। ये जो और पाने की इच्छा है, ये हमें कभी भी एक अग्नि की तरह है जो जलती रहती है, हम कभी संतुष्ट नहीं होते। तो इसीलिए काम क्रोध लोभ इसको त्यागना चाहिए। तो दक्ष ने क्रोध किया, सबने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो चले गए। और अब जब दक्ष चले गए तो नंदी जानते हैं आप, शिव जी के वाहन है, उनसे सहन नहीं हुआ कि ये क्या हमारे सामने हमारे स्वामी को इतना श्राप देकर चला गया। तो नंदी खड़े हो गए। और उस समय ऐसा हुआ था कि जब वो श्राप दे रहे थे तो किसी भी ब्राह्मण ने विरोध नहीं किया, सामने सब ब्राह्मण बैठे थे यज्ञ करने के लिए, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने रोका नहीं दक्ष को कि अरे अरे आप गलत कह रहे हो, शिव जी ऐसे नहीं है, आपको श्राप नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए नंदी ने तीन श्राप दिए, एक तो दक्ष को दिया और दूसरा दो ब्राह्मणों को दिए, दो श्राप ब्राह्मणों को दिए, क्योंकि आपने शिव जी की अपमान को सहन किया। देखिए ऐसा भक्ति के मार्ग में अपना अपमान सहन करने के लिए व्यक्ति को तैयार होना चाहिए, लेकिन हाँ जब दूसरों पर अपमान हो, भक्तों का अपमान हो, वो उसको सहन नहीं करना चाहिए। कोई भगवान का अपमान करे, भक्तों का अपमान करे, वो सहन नहीं करना चाहिए। अगर अपना अपमान कोई करता है तो चुपचाप उसे सहन कर लेना चाहिए, व्यक्ति को स्थान छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर किसी भक्त के प्रति अपराध हो रहा है, अपमान हो रहा है, भगवान का अपमान, प्रभुपाद कहते वो कभी सहन नहीं करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने युद्ध किया, हनुमान जी ने लंका जला दी, किस लिए? क्योंकि ये लोग भगवान का विरोध कर रहे थे, भक्तों का विरोध कर रहे थे। तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि क्रोध को हम एक ही जगह पर उपयोग कर सकते हैं, क्रोध का भी अच्छा उपयोग है, और वो है वहां जहां भक्तों के प्रति कोई अपराध कर रहा है उस व्यक्ति के प्रति क्रोध कर सकते हैं। तो ये तीनों काम क्रोध लोभ इत्यादि, तो लोभ से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो अब नंदी ने सोचा कि मुझे सहन नहीं करना है, क्योंकि शिव जी के प्रति, और शिव जी कौन है, भागवत में दिया गया है बहुत सुंदर और स्पष्ट वर्णन है शिव जी का। भागवत कहता है निम्न गानाम यथा गंगा, जैसे सारी बहने वाली, निम्न गाना जो नीचे की ओर जाती है, नदियां अर्थात नदी, तो सारी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, देवताओं में अर्थात देवों में भगवान श्री कृष्ण अच्युत श्रेष्ठ हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, और वैष्णवों में भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं शंभु, उनसे बड़ा कोई नहीं श्रेष्ठ है, वैष्णवानाम यथा शंभु। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति अपराध होते हुए देखना भी अपराध है, सुनना भी अपराध है। वैष्णव अपराधों में एक सूची आती है कि अगर हम किसी भक्त का अपमान निंदा सुनते वो भी अपमान। तो नंदी खड़े हो गए, शिव जी बैठे हैं, शिव जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन नंदी खड़े हो गए और उन्होंने कहा ये सारे ब्राह्मण जिन्होंने दक्ष का सहयोग किया और शिव जी के प्रति अपमान किया, मैं श्राप देता हूं कि ये सारे ब्राह्मण आज से दिव्य ज्ञान से परे हो जाएंगे, इनको कभी दिव्य ज्ञान नहीं मिलेगा। और दूसरा, दक्ष को मैं श्राप देता हूं कि बहुत जल्दी इसका ये जो घमंड भरा हुआ सर है, बहुत घमंडी है ये सर कट जाएगा, इसकी जगह बकरे का सर लगेगा। और फिर उन्होंने ब्राह्मणों को कहा, और बहुत क्रोध था, तो फिर कहा कि ये सारे ब्राह्मण ये सब गरीब हो जाएंगे, घर घर घूमना पड़ेगा इनको अपने जीवन यापन करने के लिए। देखिए इसीलिए कलयुग में ब्राह्मण गरीब होते हैं, ये श्राप है नंदी का। तो ऐसे जब श्राप दे दिया, वैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि अपने स्वामी की रक्षा करना तो ठीक है, लेकिन ये ब्राह्मणों को श्राप नहीं देना चाहिए था नंदी को, ये ठीक नहीं था। तो शिव जी के प्रति अपराध हुआ, नंदी ने श्राप दिया, तो उधर ब्राह्मणों में भी भृगु मुनि खड़े हुए और उन्होंने नंदी को श्राप दे दिया, उन्होंने शिव जी के अनुयायियों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा ये सारे जो शिव जी के अनुयायी हैं जो इन्होंने वेदों को ब्राह्मणों का अपमान किया है, क्योंकि ब्राह्मण कौन है जो वेदों का पालन करते हैं, और इन्होंने ब्राह्मणों और वेदों का अपमान किया है, और जो वेदों का अपमान करेंगे तो ऐसे सारे अनुयायी ये नास्तिक बनेंगे, नास्तिक बनेंगे, वेदों के सार को नहीं समझेंगे। वैसे आचार्य समझाते हैं कि इस श्राप को पूरा करने के लिए शिवजी शंकराचार्य जी के रूप में आए। शिवजी महान भक्त हैं, सारे शास्त्र जानते हैं, भगवान को जानते हैं, लेकिन शिवजी शंकराचार्य जी के रूप में आए। ये शिव पुराण में बताया गया है। शिव पुराण में कथा आती है कि शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि कलयुग में मैं एक ब्राह्मण के रूप में पृथ्वी पर जाऊंगा और असत शास्त्र का प्रचार करूंगा, मतलब जो सही नहीं है, असत है, वो खुद ही कहते हैं शिव जी। ये शिव पुराण में आती है। पद्म पुराण में आता है वर्णन कि पद्म पुराण में शिव जी कहते हैं मायावादम असत शास्त्रम प्रछन्नम बौद्धम उच्यते, कि ये जो मायावाद जिसका मैं प्रचार करूंगा ये असत शास्त्र है। तो उस श्राप को पूरा करने के लिए वो शंकराचार्य बने, वो आए और उन्होंने एक ऐसा मार्ग दिया जिसमें कहा कि भगवान का कोई रूप नहीं होता। आप सोचिए शिवजी को कितना कष्ट हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा उस बात को फैलाने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा के लिए उनको करना पड़ा, तो उन्होंने इस बात को फैलाया। तो खैर ये श्राप दे दिया दोनों ने, इधर से श्राप उधर से श्राप। अब शिवजी ने जब ये सब देखा कि यहां से मेरे जो गण है वो श्राप दे रहे हैं, वहां से वो श्राप दे रहे हैं, शिवजी को अच्छा नहीं लगा और शिवजी उठे और वहां से उठकर चल दिए, कुछ नहीं कहा। प्रभुपाद लिखते हैं ये वैष्णव है। शिवजी उदाहरण देते हैं कि वैष्णव को कैसे हो, शिवजी चाहते तो क्या क्या नहीं कर सकते थे, तांडव करके सारे ब्रह्मांड का नाश वो कर सकते हैं केवल नृत्य करके। आप देखिए किसमें इतनी शक्ति है कि नृत्य करके सारे ब्रह्मांड का नाश कर देते हैं, ऐसे कौन व्यक्ति है। तो शिवजी जब इतना कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो परम वैष्णव हैं इसीलिए चुपचाप उठे वहां से चले गए, किसी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना पक्ष भी नहीं रखा कि अरे दरअसल मेरी गलती नहीं थी, मेरा तो ये स्थान है ये, वो कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक, चले गए उठकर। ये वैष्णव, ये भक्त है कि जहां अपना अपमान हो तो उसके लिए कोई चिंता नहीं करते, लेकिन जहां दूसरों का, भक्त का या भगवान का अपमान हो तब वो फिर विरोध करते। और वैसे दक्ष ने इस क्रोध में आकर एक बहुत बड़ा अपराध किया, वो था वैष्णव अपराध। अपराधों की सूचियों में बहुत सारे अपराध होते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति किया गया अपराध ये पागल हाथी के समान है। जैसे एक पागल हाथी को आप खेत में छोड़ दीजिए, आपने कई दिनों से कई महीनों से मेहनत करके खेत में आपने फसल उगाई है, अब बस कटने वाली है, और आप एक पागल हाथी को उसमें छोड़ दीजिए या पागल हाथी आ जाए तो क्या होता। मैंने बेलगाम के पास, हम लोग एक प्रकल्प कर रहे हैं गोकुल धाम, जहां पर बेलगाम से करीब कुछ दूर जाकर भक्त कुछ वहां रहकर वैदिक सभ्यता को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो जंगल के पास है, तो वहां कभी कभी पागल हाथी, पागल नहीं जंगली हाथी आ जाता है। तो एक बार हमने देखा था कि एक बार एक स्थान पर जहां चावल उगाया गया था, तो चावल की खेती हो रही थी, काफी बड़ी जगह थी। हम लोग फिर रात को सो गए, सुबह किसी ने कहा कि अरे अरे हाथी आया था वहां पर, तो हम लोग सुबह उस स्थान को देखने गए, तो जितना बहुत बड़ा जगह था वो सारा समाप्त हो गया था, खराब कर दिया हाथी ने। क्योंकि वो क्या किया, वैसे वो इतना बड़ा शरीर है उसका, वो क्या करे, वो आया और खाली लेट गया, और लेट कर थोड़ा उसने ऐसे घुमा लिया अपने आप को, सारा खेल बर्बाद हो गया। तो हाथी, तो चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि अगर पागल हाथी को छोड़ दिया जो सब कुछ खराब कर देगा, पागल हाथी को वश में करना बड़ा कठिन होता है, एक समय एक बार एक जगह पर शायद उड़पी में ऐसा हुआ था कि वहां हाथी होते हैं, मंदिर के लिए हाथी रहते हैं, तो एक बार उसने आग देख ली तो भागा, तो आग का जो रंग था लाल, उसको लाल रंग याद था और वो इतना पागल हो गया कि उसको जो भी लाल रंग का दिख रहा था, चाहे कार हो या कोई भी हो, सबको तोड़ता जा रहा था, कंट्रोल नहीं हो रहा। तो इसलिए पागल हाथी को अगर आपने छोड़ दिया तो ये वैष्णव अपराध इस तरह है। हम लोग कई महीनों से, कई वर्षों से भक्ति करने का प्रयास करते हैं, भगवान को पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक वैष्णव अपराध सब समाप्त कर देता, हमारी रुचि चली जाती है। लोग प्रश्न करते हैं 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 10 साल हो गए जब करते हुए, लेकिन वो रुचि पहले जो थी अब नहीं है, वैष्णव अपराध। क्योंकि जब हम पहले पहले आते हैं हमें सारे भक्त बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे 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 हम अपराध कर बैठते। तो दक्ष ने ही अपराध किया और इसीलिए आगे चलकर उसको बहुत बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। तो खैर शिव जी वहां से उठकर चले गए और अब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का प्रमुख बना दिया, तो उसको और गर्व हो गया। पहले से ही उसको अहंकार था कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं और अब ब्रह्मा जी ने उसको दक्ष प्रजापति को एकदम प्रजापतियों का प्रमुख बना दिया। तो फिर उसने यज्ञ किए, उसने यज्ञ प्रारंभ किए और यज्ञ में एक दिन ऐसा हुआ कि शिवजी को नहीं पता था, शिवजी की पत्नी थी सती, आपने सुना है शिवजी की पत्नी है सती, पार्वती जी से बाद में विवाह हुआ, पहले सती से हुआ था। तो सती बैठी थी एक दिन और अचानक उन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से बहुत सारे विमान, उसमें सारे देवता देवियां, वो सब सज धज के जा रही हैं। तो सती को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने बात सुनी, क्या बात कर रही हैं? तो सब दक्ष प्रजापति के घर जा रही हैं और वहां पर यज्ञ है। अरे, सती ने कहा मेरे ही पिता के घर में यज्ञ है, मुझे ही नहीं पता, और सब सज धज के जा रहे हैं। दरअसल बड़े बड़े विमान, देखिए शास्त्रों में ये वर्णन है कि वैदिक सभ्यता में देवी देवताओं के पास अपने खुद के इतने विमान हैं और वो जो सब बिना किसी पेट्रोल के चलते हैं, कोई पैसा नहीं देना पड़ता, टिकट नहीं खरीदना पड़ता उनको। हम लोग एक प्लेन बना लेते हैं, हमें बड़ा गर्व हो जाता है, अहंकार हो जाता है। वैसे इस जगत में व्यक्ति को अहंकार बहुत जल्दी होता है। इंग्लिश में कहावत है कि अगर आप किसी व्यक्ति को उस मूल्य में खरीदे जो उसका सही मूल्य है, अब ध्यान से सुनिए, अगर हम किसी व्यक्ति को उस मूल्य में खरीदे जो उसका सही मूल्य है और उसको उस मूल्य में बेचे जिसको वो सोचता है कि वो उसका मूल्य है, हम उसको खरीद रहे हैं उस मूल्य में जो उसका सही मूल्य है, लेकिन हम बेच रहे हैं उस मूल्य में जो वो सोचता है कि उसका मूल्य है, बहुत लाभ होगा, बहुत प्रॉफिट होगा। समझ में आया आपको? अर्थ है कि मान लीजिए व्यक्ति का मूल्य 100 रुपया है, हम उसे 100 रुपये में खरीदते हैं, लेकिन हम अगर उस मूल्य में बेचें जो व्यक्ति समझता है, तो व्यक्ति क्या समझता है, मेरा मूल्य 1 करोड़ रुपया है, अगर उस मूल्य में बेचे तो स्वाभाविक है कि बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत लाभ होगा। तो हर व्यक्ति के अंदर अहंकार है, तो हमारा अहंकार टूटना चाहिए शास्त्र पढ़कर, कि हम तो एक प्लेन बनाते हैं, बड़ी मुश्किल से चलाते हैं, आकाश में हजारों हजारों प्लेन उड़ते हैं, और उस समय भी थे, वैदिक सभ्यता में भी थे, लोग ऐसे उड़ा करते थे प्लेन, वर्णन है भागवत में, बड़ी बड़ी इमारतों का वर्णन है। हम तो केवल ये सोचते हैं, जो विज्ञान है उसने हमें पढ़ा पढ़ा कर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कुछ समय पहले आदमी पत्थरों पर रहता था, केव्स में, गुफाओं में रहता था, पत्थर से आग बनाता था, बस यही हमें विश्वास दिला दिया, और इसलिए हम सोचते हैं हम बहुत एडवांस हो गए। शास्त्र कहता है कोई पत्थरों में नहीं रहता था, कोई गुफाओं में नहीं रहता था, बड़ी बड़ी इमारतों का वर्णन है। श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में माता देवहूति, जब उनका विवाह नहीं हुआ था, उनका वर्णन है कि वो अपने महल की छत पर खेल रही थी, छोटी थी जब, विवाह नहीं हुआ था, तो महल की छत पर खेल रही थी। उनकी महल की छत इतनी बड़ी थी कि जो प्लेन देवताओं के उड़ते थे वो वहां से जा रहे थे, उनकी इतनी ऊंची इमारत थी। आप बताइए कौन इतनी ऊंची इमारत बना देता है। तो इसलिए ये जो अहंकार हमें है कि हमने बहुत कुछ प्रगति कर ली है, कोई प्रगति नहीं, अधोगति हो गई है हमारी, नीचे आ गए हैं। तो इसलिए ये अहंकार नहीं होना चाहिए। तो खैर, सती ने देखा कि सब जा रहे हैं, तो उसको पता चला कि मेरे पिता इन्होंने एक यज्ञ किया है। तो अब सती की भी इच्छा हुई कि मुझे भी यज्ञ में जाना है। तो सती आई शिव जी के पास और उन्होंने शिव जी से कहा कि देखिए मेरे पिता ने एक यज्ञ किया है, अभी अभी मैंने सुना सारे देवता देवी जा रहे हैं, तो हमें भी चलना चाहिए, आप तैयार हो जाइए। तैयार कर, शिव जी तो वैसे ही तैयार है, तुमको क्या करना है। तो आप पता है ना शिव जी कैसे रहते हैं, उनकी तो तैयारी हमेशा रहती है, बस जैसे हैं वैसे ही चल देते हैं। राख लगी हुई, सांप इधर उधर घूम रहा है, उनको कोई चिंता नहीं, वैरागी आदमी। तो शिव जी ने कहा सती से कि देखो, जहां पर बुलाया नहीं जाए वहां जाना नहीं चाहिए, अपमान हो जाता। बहुत सुंदर बात शिव जी कह रहे थे कि हमें बुलाया नहीं गया है, हमें संदेश नहीं मिला, हमें आमंत्रण नहीं मिला है, इसलिए जहां आमंत्रण नहीं हो वहां नहीं जाना चाहिए, अपमान हो जाता है। स्वाभाविक है ना, आपको किसी ने बुलाया ही नहीं आप चले जाएं, जैसे किसी की शादी हो रही है आप वहां चले जाएं, जाके खड़े हो जाएं, लोग बोले क्या भाई कहां से आए, बोले शादी हो रही इसलिए आ गए। अरे आ गए तो क्या, कौन हो, कोई जानता है, कुछ नहीं। तो एक नियम है। लेकिन सती ने क्या कहा, सती ने कहा कि देखिए, अपने माता पिता के घर, अपने संबंधियों के घर, अपने बहुत निकट के मित्रों के घर बिना आमंत्रण के भी जा सकते हैं। मेरे पिता का घर है, उसके लिए मुझे कोई आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। शिव जी ने कहा अगर ऐसा है, वो तुम्हें अपनी पुत्री मानते हैं, तो आमंत्रण क्यों नहीं भेजा, सारे देवताओं को बुलाया, तुम्हें क्यों नहीं बुलाया। शिव जी तो जानते थे क्या होने वाला है, लेकिन थोड़ा समझा रहे थे, क्योंकि नहीं तो मानती नहीं सती देवी, तो तुम्हें क्यों नहीं बुलाया। तो सती कहती है अरे इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, भूल गए होंगे, ध्यान नहीं रहा होगा। अब ठीक है, अपने घर वालों को अगर कोई नहीं बुलाए तो इसका मतलब थोड़ी हम नहीं जाएंगे, हो गया होगा, भूल गए होंगे। सती देवी को इतनी बुद्धि नहीं आई कि सारे देवताओं को बुला सकते हैं, किसी को नहीं छोड़ा, केवल आपको नहीं बुलाया, तो केवल आपको बुलाने के लिए भूल गए, बाकी सबको बुलाया। अरे घर वालों को तो पहले संदेश देना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे यज्ञ है, आ जाना। तो सती ने कहा नहीं नहीं पिता भूल गए होंगे, तो हमें जाना चाहिए। सती जिद करने लगी, शिव जी ने बहुत समझाया, क्योंकि शिव जी जानते थे वहां क्या होगा, लेकिन सती नहीं मानी। और अंततः फिर शिव जी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी बहुत इच्छा है, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम जाना चाहो तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। दरअसल जब कोई वैदिक अनुष्ठान होते हैं तो उसमें पति पत्नी को साथ में जाना चाहिए, अकेले नहीं। सती ने प्रथा तोड़ दी, शिव जी चाहते नहीं थे कि वो जाए, क्योंकि वो जानते थे कि वहां पर क्या होगा, वहां पर केवल अपमान होगा और कोई बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। लेकिन सती मानी नहीं, तो शिव जी ने कहा कि नहीं, मुझे बुलाया नहीं है, मैं नहीं जाऊं। तो सती ने कहा ठीक है, आप मत जाइए, मैं जाता हूं, ठीक तुम्हारी इच्छा। तो सती चली गई और ऐसा वर्णन है कि सती पहुंची घर में तो कोई उनसे बात नहीं कर रहा। उनकी बहनें थी, हमने बताया ना, सोलहवीं थी ये, सोलहवीं पुत्री, उनकी बहनें थी, उनकी माता थी, उनके पिता तो देख ही नहीं रहे थे। सब यज्ञ में तो बड़ा आश्चर्य लगा सती को, ये क्या हुआ है, ठीक है घर में आते हैं, आप देखिए किसी पुत्री का विवाह हो गया, अगर वो घर में आती है तो कोई तो जाकर दो बात, कैसे हो क्या, कुछ नहीं, किसी ने बात नहीं की, क्योंकि माता डर रही थी दक्ष के कारण, पुत्रियों को धमका कर रखा हुआ था दक्ष, कोई बात नहीं करना। तो सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर सती ने सोचा ठीक है देखेंगे, पिता के पास गई, पिता ने बात नहीं की। और फिर जब यज्ञ हुआ तो उसमें सती ने देखा कि सारे देवताओं के लिए हिस्सा रखा गया, आहुतियां दी गई सारे देवताओं को, शिव जी को नहीं दी गई। तो अभी तक सती अपने अपमान को सहन कर रही थी, क्योंकि अभी कोई उससे बात नहीं कर रहा, कोई उससे कह नहीं रहा, तो उसका अपमान था। सती ने कुछ नहीं सोचा, लेकिन अब उसने देखा कि उनके पति का अपमान हो रहा है, शिवजी का हिस्सा नहीं रखा गया, तो बहुत क्रोधित हो गई सती। और सती ने दक्ष से कहा कि आप क्या समझते हो, आपने शिवजी का हिस्सा नहीं रखा, आप जानते हो शिव शब्द का अर्थ क्या होता है? शिव शब्द का अर्थ है मंगलमय, शिव जो मंगल करता है, कभी किसी का अमंगल कर ही नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति को शिव कहते हैं। शिव शब्द का अर्थ है मंगलमय, और आपने ऐसे व्यक्ति के लिए अमंगलकारी कार्य किया, ऐसे व्यक्ति का अमंगल सोचा आपने। और सती ने कहा कि आज मुझे ग्लानी हो रही है, मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपकी पुत्री, मुझसे बड़ी गलती हुई, मेरे पति ने मुझे रोका था। उस समय सती को स्मरण आया, उसने कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मेरे पति ने रोका था, लेकिन मैं उनके कहने के बावजूद यहां पर आई, उनकी अवज्ञा करके यहां पर आई, और आज मुझे आपकी पुत्री होने पर शर्म आ रही है। मुझे लग रहा है कि ये जो शरीर जो आपसे मिला है, इसको मैं रख नहीं पाऊंगा। और इसीलिए उन्होंने सबके सामने योग अग्नि प्रकट की। योग अग्नि अर्थात अपने योग के बल से तुरंत वहां अग्नि प्रकट की सती देवी ने। उन्होंने भगवे वस्त्र धारण किए। उस समय वैसे एक विवाहित स्त्री के लिए भगवे या अन्य वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, उसको जो वैराग्य के लक्षण, लेकिन उन्होंने उस समय भगवे वस्त्र धारण किए क्योंकि वो अब अपना देह त्यागने जा रही थी। दरअसल वो शिवजी से क्षमा मांगना चाहती थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं कैसे जाऊं शिवजी के पास, उन्होंने मुझे कितना मना किया था, समझाया था, लेकिन मैं समझी नहीं, और अब यहां पर आकर मैंने खुद अपनी आंखों से अपने पति का अपमान देख लिया, इसलिए मेरे लिए जीवित रहना ठीक नहीं है। और उस समय उन्होंने वो अग्नि प्रकट करके उस अग्नि में प्रवेश कर गए, अपने देह को समाप्त कर दिया सबके सामने। आप देखिए पिछले यज्ञ में जो हमने बात की, दक्ष ने शिवजी का अपमान किया, शिवजी के अनुयायियों ने कुछ कहा, लेकिन शिवजी ने कुछ नहीं कहा, वो चले गए, क्योंकि अपना अपमान भक्त सहन कर सकता। लेकिन जब शिवजी को पता चला कि सती का अपमान हुआ और सती ने अपने देह को त्याग दिया, इतना अपमान उसका हुआ कि उसने अपने योग अग्नि में जलकर वो खाक हो गई, तब शिवजी शांत नहीं रह पाए। तो देखिए ये प्रमाण उन्होंने दिया कि जब अपने ऊपर हुआ, अपना अपमान हुआ, सारी सभा में सबके सामने शिव जी ने कुछ नहीं किया, एक शब्द नहीं कहा, चुपचाप चले गए वहां से। लेकिन जब सती का अपमान हुआ तब शिव जी चुप नहीं रहे, और शिव जी ने जैसे ही सुना कि सती से अपने देह को त्याग दिया, और वो भी किस लिए, अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई, उसका अपमान हुआ वहां पर, लोगों ने ठीक से बात नहीं की, पिता ने नहीं की, माता ने नहीं की, बहनों ने नहीं की, अपमान किया केवल इसलिए कि वो शिवजी की पत्नी है, इसलिए नहीं कि वो मेरी पुत्री है, इसलिए कि वो शिवजी की पत्नी है, इसलिए उसका अपमान हुआ। तो शिवजी को बहुत क्रोध आ गया, और फिर शिवजी ने एक ऐसा कार्य किया जो आगे चलकर विनाश का कारण बना। तो शिव जी ने क्या किया और आगे कैसे विनाश हुआ, इस सब की चर्चा अगले रविवार को करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा। आप में से किसी के कोई प्रश्न?